नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने कहा है कि भारत के पास कुल 74 दिनों की आरक्षित क्षमता है और कच्चे तेल उत्पाद भंडार और भूमिगत भंडारों में बने विशेष कार्यनीतिक भंडारण को मिलाकर वास्तविक स्टॉक लगभग 60 दिनों का है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दोहराया है कि भारत में पेट्रोलियम और एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित है और नियंत्रण में है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी खुदरा ईंधन दुकानों पर पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है और देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कमी नहीं है। घरेलू रिफाइनरी उत्पादन में 40% की वृद्धि भी हुई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। श्री रिजिजू ने कहा कि भारतीय जहाज होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित रूप से गुजर रहे हैं।
Our ships are passing through Strait of Hormuz.
हमारे कुछ जहाज होर्मुज पार कर चुके हैं और कुछ करने वाले हैं। ये भारत की स्थिति को दर्शाता है। भारत कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हैं जो सभी पक्षों से बात कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री, ईरान के राष्ट्रपति और खाड़ी देशों के प्रमुखों से बात की है। भारत चुनौतियों के बावजूद बहुत ही बेहतर स्थिति में है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 6 अप्रैल तक होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने की चेतावनी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर फिलहाल बमबारी नहीं करेंगे। इस बीच हजारों अमरीकी सैनिक क्षेत्र के करीब पहुंच गए हैं। उधर ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। दूसरी तरफ इसराइल ने हिजबुल्ला से लड़ने के लिए दक्षिणी लेबनन में और अधिक सैनिक तैनात कर दिए हैं। इसराइल में लगातार हवाई हमलों के सायरन बज रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के वैश्विक परिणाम कोविड महामारी की तरह ही विनाशकारी हो सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन कल मॉस्को में व्यापारिक नेताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले से भड़के संघर्ष ने कई उद्योगों को संकट में डाल दिया है। सशस्त्र संघर्ष मौजूदा स्थिति को तेजी से प्रभावित कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय रसद, विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा कर रहा है। अमरीका की एक संघीय अदालत के न्यायाधीश ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ नशीले पदार्थों से संबंधित आतंकवाद के अभियोग को फिलहाल रद्द करने से इनकार कर दिया है। मादुरो को जनवरी में सेना द्वारा पकड़े जाने के बाद से अमरीका में कैद कर लिया गया था। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी के नेता बालेंद्र शाह आज नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह काठमांडू के शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में होगा। बालेंद्र शाह कल आरएसपी संसदीय दल के नेता चुने गए। उनकी पार्टी ने 5 मार्च को हुए संसदीय चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। 35 वर्षीय रैपर से राजनेता बने बालेंद्र शाह देश में सर्वोच्च कार्यकारी पदभार को संभालने वाले मधेस क्षेत्र के पहले व्यक्ति भी होंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की तत्परता, शांति रक्षक अभियानों को व्यवस्थित करने और मानवीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के सशक्तिकरण का उल्लेख किया। ये बैठक फ्रांस में हो रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने वैश्विक शासन में सुधार को लेकर बातचीत की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के दूसरे चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्ले ऑफ के आयोजन स्थलों की जानकारी बाद में साझा की जाएगी। दूसरे चरण में 12 शहरों में 50 मैच खेले जाएंगे। इनमें बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली शामिल हैं। आईपीएल का पहला चरण कल से शुरू हो रहा है। उद्घाटन मुकाबले में कल शाम बेंगलुरु में वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने रहेंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।